ओम शांति। अगर बाबा के हम बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो कौन सी बात को पक्का कर लें? मम्मा मास है, जो विशेष धारणा मम्मा की भी रही, पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए, व्यर्थ से छूटने के लिए, अपने को हल्का करने के लिए बुद्धि बाबा से झट से लग जाए, एक ही मंत्र है और वो मंत्र है ड्रामा। जो हुआ ड्रामा, फिनिश फिनिश। ड्रामा का मतलब क्या है? अपन कोई भी ड्रामा नाटक देखते हैं, हाँ देख के आए, वो कहानी बुद्धि में रहती है, ये देखा, फिर थोड़े दिनों बाद वो भी भूल जाती है। लेकिन यहां हमें ड्रामा देखते हुए समझते हुए हर बात को बस देखा भूला, देखा भूला। बाबा हमें कहां ले चल रहा है? मम्मा कहती थी, आने वाली हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये याद रखो। अगर सचमुच हमें मालूम पड़ जाए और ऐसा ही हो जाए कि बस ये नेक्स्ट जो सेकंड आएगा ना, फिनिश, क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे? बस क्या कर लेंगे, ये भी सोचने की मार्जिन नहीं है। अंतिम घड़ी आई, जरा सा यूं हुआ और गया। हम अपने आप को मन बुद्धि से मेंटली इतना प्रिपेयर करें, कुछ भी हो जाए। ड्रामा, ड्रामा बहुत मीठा है। ड्रामा में जो मेरा पार्ट है, फिर कोई कोई कह देते हैं गलती करने के बाद भी, कहते ड्रामा में यही था। ड्रामा गलती करने के लिए नहीं है, ड्रामा है अपना रोल अच्छे से अच्छा प्ले करने के लिए। ड्रामा में चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे साइड एक्टर एक्ट्रेस हो, सबको ये होता है मैं अपना रोल, मेरा मेकअप सब अच्छा होना चाहिए। हम भी बाबा के बच्चे इस बेहद के ड्रामा में एक्टर्स हैं। मेरा भी हर रोल, क्योंकि हमारा एक रोल नहीं है, आप देखो तो सही कितना हम रोल प्ले। एक सेकंड में अभी किसी से मिल रहे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, दूसरे से मिल रहे हैं, ये पड़ोसी है, ये दोस्त है, ये मेरा कस्टमर है, हाँ ये मेरा मित्र है, ये मेरा जरा अपोजिशन वाला है। एक सेकंड भी नहीं लगता है कितने लोगों से हम मिल लेते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्मृति, मैं हीरो पार्ट धारी आत्मा हूं, और कभी समय निकालकर हमें सारा दिन बैठकर कर्म करते हुए एक दिन ये अभ्यास करें, आज मुझे साक्षी होकर बस यही देखना है ड्रामा में मेरा क्या रोल है और जो जो आ रहे हैं इनका क्या रोल है। नो कमेंट्स, नो रिएक्शन। ऐसे आपने ऐसे क्यों किया? उसने ड्रामा प्रमाण बिल्कुल सही किया, अब मुझे क्या करना है? आपको देखो इतना आनंद आएगा कि वाह वंडरफुल ड्रामा, इतना हल्कापन रहेगा, अपना दिल दिमाग एकदम साफ रहेगा। तो आज बाबा ने ड्रामा का पाठ हम बच्चों को पक्का कराया है। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे यहां तुम बदलने के लिए आए हो, तुम्हें आसुरी गुणों के गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। क्यों दैवी गुण क्यों धारण करने हैं? ये देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। अभी पिछले 2-3 दिनों से देखेंगे बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ाई के महत्व को बता रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं ये कौन सी पढ़ाई है जो बाप ही पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई, एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता, बाप ही सहज ज्ञान राज योग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो ये बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। अपने को ये नशा चढ़ाओ, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहां मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वे पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। 2 दिन पहले भी था ना बाबा की मुरली में, कैसे ये पढ़ाई हमारी जन्म जन्मांतर के लिए है, और उस दुनिया में तो वो जो पढ़ाई है बस इस एक ही जन्म में काम आएगी। हो सकता है उस एक जन्म में भी काम ना आए। कई बार कई लोग सीए बन जाते हैं, बैठ के फिर बिजनेस करते हैं, सीए का काम नहीं करते। डॉक्टर बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। वकील बनते हैं, वो कुछ और काम करने लग जाते हैं। लेकिन बाबा हमें जो पढ़ा रहा है, हम वो जन्म जन्मांतर के लिए सीख रहे हैं, धारण कर रहे हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है, ये तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल क्या करेंगे, दैवी गुण धारण करने हैं। यहां तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो और हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है, भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और क्या करते हैं, तुमको पढ़ाते भी हैं। इसका मतलब 2 काम है, हमें पढ़ाते हैं, हमें योग्य बनाते हैं। हम योग्य बन जाएं हमारे लिए, फिर वैसी दुनिया भी रचते हैं, सारी सृष्टि भी पावन हो जाए। हमें देवता बनाते हैं पढ़ाई के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं, उसमें किसका सहयोग है? भले हम ही होंगे लेकिन ये दुनिया वातावरण सब बदल जाए, उसके लिए नेचर, नेचुरल क्लेमिटीज वगैरह वगैरह, इन सब के सहयोग से बाबा ये पुरानी दुनिया बदल देते हैं। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं, तुमको भी पढ़ाते हैं। वहां तो विकार की बात होती नहीं, तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य, उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे, जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहां आए हो। समझ में आया हम बाबा के पास क्यों आए हैं? पावन बनने के लिए, देवता बनने के लिए। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं, अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हमारी स्मृति कितनी ऊंची होनी चाहिए, सूक्ष्म बात है, कितनी श्रेष्ठ। हम एकदम पवित्र थे, घर गृहस्थी में रहते, मेरी घर गृहस्थी कैसी थी? एकदम पवित्र। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है, अभी तुम्हारा ये है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं, क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें? कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभालने के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात ही अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाएं ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहां भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो बाप उनको देख खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ बाप को याद करना है। हमारा पाठ ही ये है, देह सहित देह के सर्व संबंध भूलो। लेकिन हम अधिकतर क्या करना शुरू करते हैं? मित्र संबंधियों से कटना शुरू हो जाते हैं, उनसे नहीं कटना है, पहले अपने से कटो। अपने लिए हमें सब कुछ चाहिए, सब बातें करते रहते, नहीं, इस देह को ही भूलना है। ये कर्म इंद्रियां हमारी हमारे वश में हो। तो बाबा ने कहा है, देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है, शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म कैसा था? पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसा नहीं देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी हैं। देवताएं सर्व गुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी अभी क्या है? अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियंस क्राइस्ट के आगे, बौद्धि बुद्ध के आगे, सिख गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं ये हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? ये किसको पता नहीं, प्राय लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं। मनुष्य की मतें भी अनेक हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए। असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां क्या है? वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, लेकिन अंतर क्या है? नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। जब हम सूर्यवंशी थे तो पाठ पूजा नहीं करते थे, राज्य करते थे। सुखी थे, राज्य भी करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। कैसा था? उसको कहा जाता है सुख धाम, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उनों का ही राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं। सत्युगी और त्रेता युगी राजाओं का अंतर कितना बड़ा है। सत्युगी जब हम राजा रानी थे, महलों में रहते थे, देवी देवताओं के महल है। फिर जब द्वापर से अन्य अन्य राजाओं का राज्य शुरू होता है तो क्या करते हैं? तो किले बनने शुरू हो जाते हैं। क्या अंतर है महलों और किलों में? क्या अंतर है? महल सुंदर है, खुलापन है। हालांकि महल भी बड़े बड़े और किले भी बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन किला माना ही है जहां भय है। किले में जाके देखो कहां उनके सिपाही खड़े होते थे, युद्ध होता था तो फिर कैसे वो थोड़े झरोखे से बने हुए होंगे। तो द्वापर युग से हम जब वाम मार्ग में गिरते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो हम महलों की बजाय कहां आ जाते हैं? किलों में बंद हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उनों का ही राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं। तभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है भगवानो वाच, राजाई पानी है भगवानो वाच। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। राजाओं का राजा कौन? बहने माताएं, राजाओं का राजा कौन बोलो? राजाएं तो हैं, इतिहास है उनका। राजाओं के राजा देवी देवता। राजाएं भी किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की करते हैं ना, मगर देवी देवता किसकी पूजा करते हैं? किसी की नहीं करते हैं। तो राजाओं के भी राजा देवी देवताएं हैं। भगवानु वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब आज जरा सारा दिन इस पर मनन कीजिए, भगवान क्या बना रहा है, क्या पढ़ाई पढ़ा रहा है। राजाओं का राजा वंडरफुल है। और हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। ये है कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं। कौन कौन चलेगा पहले नंबर में? सबने हाथ उठाया। फिर दो में कौन आएगा? सब पहले में, फिर दो में कोई नहीं। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सत्युग में आएंगे, निश्चय है सबको। कौन कौन सत्युग में आएंगे? आएंगे, पक्का है ना सबको? पहले पहले हम जरूर सत्युग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वे सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। कितनी बातें समझा के हम कहां जाएंगे, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या बनेंगे, बाबा क्या बना रहा है। हाँ, फिर बाबा किस बात पे ले आते हैं? अभी वर्तमान में हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हवाई किला नहीं बनाना, सत्युग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, महल ऐसा होगा, बगीचा ऐसा होगा। वो तो होगा, हम वहां चल के देखेंगे। पर वहां पहुंचने के लिए वर्तमान में पुरुषार्थ क्या करेंगे? वो पुरुषार्थ है वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती। सारा दिन हम सब वाणी से परे रहे, जहां जरूरी है तो बोलना, वरना मैं परम धाम में हूं। परम धाम में क्या करेंगे? बाबा के आगे या मोबाइल सुनेंगे? परम धाम में मोबाइल होगा भाई? है परम धाम में हम जाएंगे तो बस एकदम साइलेंस। आज सारा दिन साइलेंस डे मनाइए। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको, देखो बाबा कितना श्योर कर रहे हैं, बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। एश्योरेंस है, वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके क्या कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूं? वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, इसलिए नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, तो क्या आकर करते हैं कोई बताए? शिव जयंती मनाते हैं, जिसकी मनाते हैं वो क्या करते हैं? जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं, मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। ये ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान है क्या? ज्ञान क्या है? ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते हैं, अभी संगम युग है। क्या हमें याद रहता है ये संगम युग है? दिन भर में किस किस को याद रहता है? हाँ अभी हम संगम पर हैं। अच्छा, काफी है। माताएं याद रहता है हम संगम पर हैं? अगर ये याद रहे कि हम संगम पर हैं, ओहो भाग्य, इतना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, बात मत पूछिए। और इतनी शक्ति आएगी आत्मा में, संगम है, मैं संगम युगी हूं। तो संगम युगी ब्राह्मण कैसे होते हैं? व्यर्थ में जाएंगे, बातें करेंगे? संगम युगी माना जो कुछ भी व्यर्थ नहीं करता है, न तन न मन न धन न समय संकल्प श्वास। संगम युग है ही कमाई का युग, हर घड़ी कमाई में लगा हुआ है। मुझे अभी ये करना है, ये करना है, समय जा रहा है, फटफट ये पुरुषार्थ करना है। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है मानुष से देवता किए कर्त न लागी बार। जरूर बाप ही बनाएंगे ना, तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे। अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंचते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री का अर्थ भी किसको मालूम नहीं है। एक शिव बाबा का ही ये टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है, माला है 108 की, उन्होंने 16108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी 8 की माला, 4 जोड़ी और एक बाप, 8 रतन, 9वां हूं मैं माना शिव बाबा। उनको रतन कहते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, ये तो कभी हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाएं? बहुत से वो कैलाश पर्वत पर भी जाते हैं, वहां भी तालाब है, वहां भी ऐसा समझते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार कौन सा है? तुम्हारा ही यादगार दिल वाला गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना, तुम जानते हो। बाप और हम आत्माएं जहां निवास करती हैं, वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन तीन दुनिया दिखाते हैं ना, एक ये दुनिया जहां हम और आप बैठे हैं, और फिर इससे ऊपर सूर्य चांद से परे सूक्ष्म वतन जहां तीन देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, और फिर उससे ऊपर है परम धाम जहां हम आत्माएं और हमारा बाबा रहता है। तो बाबा ने क्या कहा, सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन आजकल तो ऐसी चर्चाएं नहीं होती हैं, पहले पहले होता था। तो हमेशा दादियां भी बताती, बाबा भी बताते थे, बच्चे सूक्ष्म वतन संगम युग पर ही बाबा आकर रचते हैं। संगम पर ही केवल ये सूक्ष्म वतन है। अब संगम युग पूरा हुआ, हम सब अपने घर वापस जाएंगे, सूक्ष्म वतन भी खत्म। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, वो कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, और वास्तव में दोनों में ही दुनिया, दुनिया माना जहां शरीरधारी रहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, वहां कोई हिस्ट्री नहीं है। परमधाम में कोई हिस्ट्री है? परमधाम में तो आत्माएं कैसी होंगी, जाकर के कैसे रहेंगे? वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कोई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। कोई कोई कहते हैं ना हमें नहीं चाहिए सतयुग। अब किस किस को सतयुग नहीं चाहिए, कोई भी नहीं है ऐसा। कोई कोई कह देते हैं क्या है सतयुग, तो बस हमें तो बाबा मुक्ति दे दे। बाबा कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर चलो एक दो जन्म लास्ट में आकर कलयुग के अंत में लेंगे, लेने तो पड़ेंगे, तो फायदा क्या हुआ, हम सुख में ना आए और केवल दुख ही दुख आ करके देखें। तो इसलिए जब हम एक्टर्स हैं ही हैं, माने ना माने, हर आत्मा एक्टर है। एक्टर माना जिसको अपना अपना एक्ट करना है। जब एक्ट करना ही है तो क्यों ना हम शुरू से ही करें। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे, बाकी इतना समय मुक्ति धाम में परम धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहां करके एक दो जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ, क्या हुआ, लास्ट में कलयुग में आकर दो चार जन्म ले भी लिए, उनकी फिर बाबा तुलना करते हैं क्या, उनका क्या हाल है। जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, अब बरसात होगी तो वो मच्छर निकल आएगा, फिर खत्म। तो एक जन्म में यहां क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे कि पार्टी नहीं है। लास्ट का एक दो जन्म तो ये तो कोई रोल ही ना हुआ ना। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आज भी हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान को समझते हैं, फिर भी सत्युग क्या होगा, कैसा होगा? कभी समय निकाल के 2-4 दिन बस केवल मुझे सत्युग में ही रहना है, देखो तो समझ आएगा, अरे सत्युग इतना विशाल, क्या क्या होगा, कैसी प्रकृति होगी। ऐसे नहीं केवल मैं देवी देवता बनूंगी, यहां मुकुट लगा होगा और वो थोड़े से रंगीन कपड़े अच्छे से पहने होंगे, नहीं, क्या होगा, कैसी प्रकृति होगी, कैसे फल होंगे, कैसा महल होगा, क्या हमारी दिनचर्या होगी, क्या हमारी मनोवृत्ति, आज की मनोवृत्तियां क्या हैं, और सत्युग में हमारी मनोवृत्ति क्या होगी। आप सत्युग तो छोड़िए, जो थोड़ी बड़ी उम्र के यहां भी बैठे होंगे, आज से 50 साल पहले भी दुनिया में कितना अंतर था, हम लोगों का बचपन कैसा था और आज का बचपन देखो कैसा है, कितना फर्क पिछले 50 बरस में आया है। तो हम जब सत्युग में होंगे तो क्या होंगे। तो बाबा ने तो कहा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं, कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल न सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। कौन कौन करेंगे पुरुषार्थ? क्यों, क्या बात है, थोड़े हाथ उठाते हैं भाई। ये दुनिया के लिए तो क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, रामायण में है, कर्म प्रधान। ये सृष्टि है ही कर्म प्रधान, हम बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। मैं सोचूं अच्छा आज मुझे कोई काम नहीं करना है बस ऐसे, तो ये बैठना भी तो कर्म ही है, कहां छूटेंगे कर्म के बिना। कर्म तो करेगी आत्मा, आत्मा में संस्कार है। मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा बनना चाहती हूं, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। किसी से मत डरिए, भगवान से भी नहीं डरना है, भगवान नहीं, भगवान तो हमें विधि सिखाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये ज्ञान देता है। लेकिन जो भी प्राप्ति होती है वो किससे होती है, प्राप्ति किस आधार से है? प्राप्ति तो मुझे मेरे कर्मों के अनुसार है। हम ये नहीं कह सकते भगवान तूने मेरी तो किस्मत में कुछ अच्छा ही नहीं लिखा। भगवान तो खुले दिल से देने वाला बैठा है, कहता जो चाहिए ले लो, फिर हम ही नहीं लेते हैं। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना है, पुरुषार्थ बिगर थोड़ी ही कुछ होना है, खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी। बाबा को भी खांसी आई होगी, खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी, तो क्या करना पड़ेगा खांसी के लिए भाई, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, समझा, ड्रामा माना ऐसे नहीं अब ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, हुई क्यों, होती भी तो किसी ना किसी कारण से है, किसी को ठंडी लगी, किसी को गर्मी लगी, किसी ने कुछ खट्टा खा लिया, कुछ ना कुछ तो करते हैं, तभी तो ये गड़बड़ होती है। अब जब गड़बड़ की है तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। ये भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, ड्रामा में जो होना होगा। अरे भाई, ड्रामा में ऐसे कुछ नहीं मिलता, अब मैं बैठ जाऊं। अच्छा, ड्रामा में होगा तो नाश्ता मिल जाएगा। अब चलो, कोई करके रहम करेगा, नाश्ते की थाली भी यहां ले आए, लेकिन उसको खाएगा कौन? वो अपने आप तो उठ के मुंह में जाएगी नहीं थाली। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसको कहा जाता है अच्छा, ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। ये भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, माया से हमारी लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा को याद प्यार भी बहुत श्रद्धा भावना से। ये कोई हमारी रूटीन नहीं है कि बाबा ने कहा चलो मैंने कह दिया, कोई मंत्र नहीं है। बाबा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग दिल से भावना से करो, देखो फिर आपको बाबा कितना प्यार करेगा। मुख्य सार, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्री मत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। इसमें मेहनत है, किसमें मेहनत है? न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने में। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। पुरुषार्थ है न्यारे बनने का। हम क्या सोचते हैं, सब लोग हमें एप्रिशिएट करें, हमारी महिमा करें, हमें प्यार करें, हमें पूछें, हमें मान शान दें, लेकिन मुझे क्या करना है? मेरा हर कर्म उल्टा, बोल उल्टा, स्वभाव उल्टा, कैसे कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा? तो अच्छा बनने का पुरुषार्थ करना है। लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे चाहें, नहीं, बाबा मुझे पहले चाहे, तो मैं उस योग्य बनूं। जब हम उस योग्य बन जाएंगे तो बाकी, जब देवी देवता हैं तो पूजा करने वाले भक्त तो अपने आप ही हैं ना। तो अभी प्रैक्टिकल में भी हम अच्छे बने तो अपने आप सब अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए कोई भी सेवा करते क्या करो, न्यारे और प्यारे, शब्द भी है पहले न्यारे फिर प्यारे, पहले न्यारा बनने का अभ्यास। स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। कौन सा स्नेह भाई? स्नेह की छत्र छाया, हमारा स्नेह बाबा से हो, मेरा तो एक शिव बाबा, फिर माया के आने की कोई मार्जन नहीं है। अव्यक्त इशारा, अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते हुए करो, जैसे स्थूल डांस में सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है, डांस करेंगे तो हाथ ऊपर नीचे पांव भी चलेगा, सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हैं, ऐसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न, खुशी के डांस में कौन सा पोज बनेगा, भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करो। डांस में तो हर कर्म श्रेष्ठ ही होगा ना, कभी हाथ से कोई कर्म करते कभी पांव से, तो ये काम नहीं करते हो लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो, तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना। ओम शांति। कितनी अच्छी बाबा की मुरली, बाबा को थैंक्स भी तो दो, बाबा को दो मिनट याद करके बाबा थैंक यू, कितने अच्छे आज के मधुर महावाक्य हमने सुने, कितना ऊंचा बाबा आप मुझे उठाते हो। चलो बाबा की याद में।